नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किला आतंकी घटना में शामिल चार और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और नीति निर्माताओं व जिला स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन शुरू। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के प्रति आमजन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आईएसबीटी देहरादून में 24 घंटे साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल दिल्ली की लाल किला आतंकी घटना में शामिल चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने एक बयान में बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के आदेश पर चारों आरोपियों को एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हिरासत में लिया है। एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राथर और मुफ्ती इरफान अहमद वागे तथा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर शाहीन सईद शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। देहरादून में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन AOC शुरू हुआ, जिसमें विकसित उत्तराखंड 2047 की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना और नीति निर्माताओं व जिला स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत करना रहा। एक रिपोर्ट।
उद्घाटन सत्र में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने AOC को जमीनी समस्याओं और नीति निर्माण के बीच महत्वपूर्ण संवाद मंच बताते हुए कहा कि पर्यटन, बागवानी, स्वास्थ्य और शहरी विकास राज्य की प्रगति के मुख्य आधार हैं। उन्होंने अनियोजित शहरी विस्तार पर रोक और सतत शहरीकरण पर जोर दिया। प्रमुख सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने विकसित उत्तराखंड 2047 की विजनिंग प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि राज्य का GSTP 2025 के 3.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2047 तक लगभग 28.92 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने उच्च मूल्य कृषि, सेवा क्षेत्र के विस्तार, डिजिटल पहुंच, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर बल दिया। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर जानकारी दी और अनुदानों में कमी, राजस्व वृद्धि की धीमी रफ्तार और व्यय बढ़ने जैसी चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय को जरूरी बताया।
बैठक में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और स्थानीय चुनौतियों का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्य सचिव ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए नए संस्थागत ढांचे विकसित करने की आवश्यकता बताई।
बैठक में बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के जिलाधिकारियों ने अपने जिलों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और स्थानीय चुनौतियों का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्य सचिव ने इन चुनौतियों के समाधान के लिए नए संस्थागत ढांचे विकसित करने की आवश्यकता बताई।
हरिद्वार में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की द्वारा एक स्वास्थ्य एक विश्व 2025 वैश्विक सम्मेलन का मुख्य आयोजन हुआ। इसमें 13 देशों से आए 350 से अधिक प्रतिभागियों और 50 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन सचिव डॉ. अजय चौरसिया ने सम्मेलन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अवसंरचना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और आपदा न्यूनीकरण जैसे प्रमुख विषयों का उल्लेख किया। सम्मेलन में CRBI निदेशक ने आपदा रोधी निर्माण, रेट्रोफिटिंग कार्यों और सुरक्षित व सतत भविष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर अपने विचार रखे। वहीं टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. वतारु ताकियोची की ने एक स्वास्थ्य एक विश्व की अवधारणा और आपदा रोधी प्रणालियों पर चर्चा की। सम्मेलन में कई विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए जिला प्रशासन के संकल्प प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली। विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट के तहत अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी गई। स्वामी राम हिमालयन इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट के उपनिदेशक डॉ. राजीव बिजुलवान ने बताया कि ICMR और नीति आयोग के सहयोग से 2024 में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में संस्थान के माध्यम से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2020 में नवजात मृत्यु दर 30% थी, जो 6 माह में घटकर 17% तक आ गई है और इसे और कम करके एकल अंक तक लाने का लक्ष्य है। मुख्य विकास अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय से काम करने के निर्देश दिए और जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने के प्रभावी प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने रुड़की चिकित्सालय में मां नवजात क्रिटिकल सेंटर की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों पर चिंता जताते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायतों में उगी घनी झाड़ियां जंगली जानवरों के छिपने की जगह बन गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और बच्चों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। सतपाल महाराज ने पंचायत विभाग को निर्देश दिया कि मनरेगा के अनटाइड फंड से झाड़ियों का जल्द कटान कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्कों में जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत की जाए। देहरादून में ISBT को स्वच्छता और व्यवस्था का आदर्श मॉडल बनाने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर पूरे परिसर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयास से ISBT ही नहीं बल्कि पूरे शहर की छवि सुधारने में मदद मिलेगी। उपाध्यक्ष तिवारी ने निर्देश दिए कि ISBT में 24 घंटे साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और सफाई व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए। परिसर में व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें MDDA और ISBT के कर्मचारियों ने परिसर और मुख्य मार्ग तक सफाई की। नालियों, प्रतीक्षालयों और बस स्टैंड के ब्लॉकों की सफाई की गई। बस चालकों और परिचालकों को भी कचरा निर्धारित डस्टबिन में ही डालने के लिए प्रेरित किया गया। गौरतलब है कि अब प्रत्येक बुधवार को ISBT में सघन स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शौचालय, पेयजल स्थल, प्रतीक्षालय और प्लेटफॉर्म की विशेष सफाई शामिल होगी। चंपावत में मशरूम उत्पादन किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। पर्वतीय कृषि को नई दिशा देने के प्रयासों के तहत उद्यान विभाग की इस पहल से जिले के किसानों की आय में बढ़ोतरी होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के अनुरूप यह योजना अब ठोस परिणाम दिखा रही है।
जिला योजना वर्ष 2025-26 में उद्यान विभाग ने जिले के चारों विकास खंड पाटी, बाराकोट, लोहाघाट और चंपावत में 28 टन मशरूम कम्पोस्ट 80% अनुदान पर वितरित किया। जिले के कुल 69 किसानों ने इसका लाभ लिया। कम लागत, कम स्थान और कम जोखिम के कारण ये मॉडल किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। स्थानीय बाजार में मशरूम 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है। घाटी क्षेत्र की ही अनुकूल जलवायु के कारण उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर मिल रही है और किसानों का कहना है कि पारंपरिक फसलों की तुलना में मशरूम कम समय में अच्छा मुनाफा दे रहा है। उद्यान विभाग तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और विपणन मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है, जिससे यह पहल युवाओं के लिए स्वरोजगार का आकर्षक विकल्प बन रही है। उत्पादन बढ़ने से स्थानीय बाजार भी सक्रिय हुआ है और भविष्य में प्रोसेस्ड तथा ड्राई मशरूम जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की संभावनाएं बढ़ रही है। चंपावत का यह मॉडल जिले को कृषि उद्यमिता के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम निभा रहा है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से सोनिया मिश्रा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली के लाल किला आतंकी घटना में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। राज्य की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और नीति निर्माताओं व जिला स्तर के अधिकारियों के बीच समन्वय मजबूत करने के उद्देश्य से देहरादून में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन शुरू। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों के प्रति आम जन की सुरक्षा के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने आईएसबीटी देहरादून में 24 घंटे साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।